ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
மரீசிஷே அந்தரிக்ஷ லோக் ஹோ கயா, மரா சப்த கே துவாரா பிருத்வி ஹோ கயி, ஔர் आपाश शब्द के द्वारा नीचे के जो सात लोग अर्थात 14 लोग, चतुर्दश भुवनानी कहते, तो 14 लोकों को तो मैंने सृजन किया, उत्पन्न किया, इस प्रकार उन्होंने विचार किया। समस्या ही आ रही परमात्मा को, एक तो सबसे पहले समस्या थी लोगों को उत्पन्न करने का, और उसके बाद उत्पन्न तो किया भी रक्षा करने का। संसार में भी होता है, पहले घर नहीं था, कोटी नहीं थी, कोटी बना दिया, तो उसके बाद दूसरी समस्या आ गई, उसको रक्षा कैसा करेंगे, उसको देखभाल कैसा करेंगे, वो चिंता हो गई। ये कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा को भी यही हुआ था, बस इतना अंतर है, उनको चिंता नहीं, हम लोगों की चिंता उनको सता रहा है, स्वयं चिंता नहीं उनको। इसलिए उन्होंने विचार किया, ये लोक तो मैंने बना दिया, ये बोल रहे ईक्षतः इमेनु लोकहा, अर्थात ये चार लोक है ये तो मैंने उत्पन्न किया पंचीकरण के द्वारा। लोकपालानुसृजहा, और ये जो लोगों को पालन करने वाले, इन लोगों को रक्षा करने वाले, लोगों को देखभाल करने वाले, लोकपाल तो होना चाहिए, लोगों को पालन करने वाले के लोकपाल कहते हैं। आजकल कोई लोकपाल बिल भी पारित कर रहे हैं, अर्थात लोगों को रक्षा करने वाले, ये जो लोगों को पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उनके जो अधिकारी, उन अधिकारियों को रचना करो अर्थात उत्पन्न करो, क्योंकि इनके बिना ये लोक नष्ट हो जाएंगे, अव्यवस्था फैल जाएगा। इस प्रकार उस परमात्मा ने विचार किया, विचार करने के बाद उसको कार्य भी करना पड़ेगा। पहले भी कहा दिया था इच्छति यतति, पहले ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होने के बाद यतति अथवा करोति, ये तीन हर जगह रहता है। तो परमात्मा ने भी विचार तो किया, तो विचार करने के बाद अर्थात इच्छा करने के बाद, उस इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए, उस इच्छा को साकार देने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर कोई इच्छा होती है, नया वस्तु के विषय में हमने सुना, किसी ने कहा व्याकरण पढ़ने से बहुत अच्छा है, शब्दों का ज्ञान होता है, ये सुना, आपको ज्ञान हो गया सामान्यता, तभी आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई, अर्थात मुझे भी व्याकरण पढ़ना है। और ये इच्छा उत्पन्न होने के बाद उस इच्छा को आपको साकार देना पड़ेगा, नहीं तो इच्छा इच्छा में ही रहेगी। इसके लिए बाद आपको यतति अथवा करोति, प्रयत्न करना पड़ेगा पढ़ने का, ये सर्वत्र है। वैसे ही परमात्मा ने पहले विचार किया, विचार करने के बाद उन्होंने उन लोकपालों को भी उत्पन्न किया। कहां से उत्पन्न किया, श्रुति बता रहे, सो अद्भ्या एवः पुरुषम समुद्रित्यः अमूर्चयत। सो बोलतो उस परमात्मा ने, सारा जगत का सृष्टा जो परमात्मा है उसने अद्भ्य का मतलब जल, जल से उन्होंने निकाल दिया। एक ऐसा श्रुति बोल रही कि जल में पड़ा होगा उसको उठा के लाया होगा उन्होंने, ऐसी बात नहीं। यहां जल से उपलक्षित है पंचीकृत पंच महाभूत लेना। ये जो पंचीकृत जो पंच महाभूत है यही जल से उपलक्षित। तो जल क्यों प्रयोग किया वहां, पंचभूतों से कहना चाहता श्रुति बता रहे जल से लाया। जैसा समुद्र में कोई घुस गया सोना उठा के लाया समुद्र से ढूंढते, इसलिए यहां जल प्रदान है उसमें, पंचभूतों में जल प्रदान है। जैसा हमारा जो शरीर है इसको हम बोलते हैं पार्थिव शरीर बोलते हैं। क्या ये पार्थिव शरीर है, पृथ्वी मात्र है, इसमें जल भी है तेज भी है सब है, वास्तव में है पांचभौतिक शरीर है। कहते भी हम लोग उसका पांचभौतिक शरीर को दफनाया, तो पांचभौतिक होने पर भी पार्थिव कहते हम, क्योंकि इसमें पृथ्वी अंश अधिक है। पृथ्वी के अंश अधिक होने से हम बोलते पार्थिव शरीर बोलते हैं। भूतों का शरीर है वो वायव्य शरीर मानते हैं, अन्यथा पार्थिव शरीर यदि होता तो कमरा पूरा बंद है प्याक है आपका, तो भी भूत कमरे में कहां से आ गया। तो भूत कमरे में आकर सताता है, जो भूत मानता है डरता है उनके लिए। वो जो आ गया वायुव्य शरीर है, तो वायुव्य शरीर मतलब वहां वायु प्रदान है। और देवताओं का शरीर है अग्नि प्रदान माना है, तेजस प्रदान माना है। तो इसलिए हमारा शरीर पार्थिव प्रदान है, सभी रहने पर भी पृथ्वी प्रदान है। वैसे ही यहां जल का मतलब है केवल जल नहीं लेना, पंच महाभूत है उनमें जल प्रदान होने से श्रुति बता रहे जल से करके। जैसा छांदोग्य उपनिषद में लेके पांचवें अध्याय में वहां पंचाल राजा के पास एक ब्राह्मण बालक गया था। ब्राह्मण बालक थोड़ा घमंडी था और राजा के पास गया। राजा ने उसको सत्कार नहीं किया क्योंकि उस बालक का हाल चाल देख, क्योंकि व्यक्ति को हम देखते ही पहचान सकते हैं, अर्थात वो उसके अंदर घमांड है अभिमान है उसका व्यवहार से मालूम पड़ता है। इसलिए कहते हैं जल में उतर के देखो और व्यक्ति के साथ रह करके देखो, तभी आपको मालूम पड़ता है। राजा ने पहचान गया ये बालक घमांडी है करके, तो इसलिए उसका सत्कार नहीं किया, सीधा प्रश्न किया उन्होंने। पहले पूछा, अरे बालक तो कुछ पढ़े हो, पिता ने कुछ आपको कुछ शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, हां राजन मैं पढ़ा हुआ मूर्ख नहीं हूं। तो वहां राजा ने एक नहीं पांच प्रश्न किया, प्रश्नों का ढेर ही लगा दिया उन्होंने। सबसे पहले वहां प्रश्न किया था उन्होंने, यतः पंचम्यावता आपः पुरुष वचसो भवति इति। देखिए वहां जल प्रयोग किया है, हे बालक जैसा पंचमी आहुति अर्थात पांच आहुति, उस आहुति में दिया हुआ जल, पुरुष वचा मतलब ये पुरुष आकृति को प्राप्त होता है। अभी देखिए वहां भी जल प्रयोग किया, क्या जल से कोई पुरुष बनेगा। पुरुष का मतलब ये शरीर का ढांचा, केवल जल से नहीं बनेगा। इसलिए वहां आपा शब्द के द्वारा भी पंचभूतों का ही संकेत है। तो जल क्यों कहा दिया? जल इसलिए कहा, उसमें जल प्रदान है। तो पांच प्रश्न किया था, पांचवे आहुति रूप से दिया हुआ जो जल, ये शरीर रूप से दिखता है, पुरुष रूप से व्यवहार होता है, किंतु बालक उत्तर नहीं दे सका। वहां वापस आ गया गुस्से से, आके पिता से साला अपना गुस्सा निकाल दिया। पिताजी से कहा, आपने क्या पढ़ाया मुझे? आपने कहा जी तो सब विद्या पढ़ा दिया करके, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा दिया। यदि आप पढ़ाया होता तो वो राजे के वहां अपमान नहीं होना ले। तो पिता ने पूछा, क्या बात है? उन्हें सब बताया। उसके बाद पिताजी स्वयं जाते हैं राजे के पास, पंचाल राजे के पास। अभी पिताजी को खूब सत्कार कर रहे हो, एकदम सत्कार किया बिल्कुल, लेकिन बच्चे को नहीं किया था, इनको किया, क्योंकि राजा पहचान गया ये श्रद्धा पूर्वक आ रहे थे। और उसने कहा, राजन मैं आपके पास इसलिए आया है, आपने जो प्रश्न किया था, पांचवे आहुति रूप से दिया हुआ जो जल, ये पुरुष आकृति को प्राप्त करता है, इसका समाधान चाहिए मुझे, धन नहीं चाहिए। तभी राजा ने वहां पहले बताया था द्यु अग्नि, ये द्युलोक अग्नि, उसमें श्रद्धा की आहुति किया जाता है। श्रद्धा मल तो आपो वही श्रद्धा, जल को ही श्रद्धा कहा जाता है। इसलिए आप भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को, ये जल है श्रद्धा का प्रतीक है। जल को निमित्त बनाकर, हे भगवान मेरे अंदर जो श्रद्धा है ये आपको चढ़ा रहे, अन्यथा जल क्यों चढ़ाएंगे? जल तो पहले ही भगवान के शंकर जी से सिर में गंगा जी बैठी है। तो इसलिए जल है श्रद्धा का प्रतीक है। वैसे ही आप भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, सारा जगत जिसने बनाया आप क्या चलाएंगे? बिल्व पत्र के निमित्त से आपने तीन गुण चढ़ा रहे भगवान को, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ये चढ़ा रहे भगवान को। तो इसलिए वहां उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहा, सबसे पहले द्यु अग्नि है अर्थात स्वर्गलोक, उसमें श्रद्धा की आहुति देती, श्रद्धा प्रदान जल की, और उसका परिणाम स्वरूप से वहां सोम रूप से परिणत होता है। उसके बाद उस सोम को पर्जन्य मतलब बारिश में आहुति दी जाती है, और उसका स्वरूप से वहां वर्षा हो जाती है, और वर्षा को इस पृथ्वी में आहुति दी जाती है। आहुति का मतलब प्रवेश होना, और उससे अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न के पुरुष के अंदर आहुति दी जाती है, उसके अंदर वीर्य उत्पन्न होता है, और वीर्य की जो आहुति है योषित में दी जाती है, और उसके द्वारा पुरुष उत्पन्न होता है। अर्थात ये जीव कैसा जा रहे हैं, यह आहुति देने से उस आहुति के द्वारा सूक्ष्म रूप से स्वर्ग में गया, स्वर्ग में भोगने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और भोगने के बाद वृष्टि में प्रवेश होता है, बारिश में, बारिश के बाद इस धरती में आता है वो जीव, और धरती में किसी अन्न में प्रवेश होता है। इसलिए वहां बता दिया है ब्रह्म सूत्र में, क्योंकि धरती में आने तक सरल है, और बाद में वो बारिश कहां गिरेगी, समुद्र में गिरेगी अथवा पहाड़ में गिरेगी कहां पता नहीं। तो उसमें आया हुआ जीव भी इधर उधर भटकते रहेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा उसको। तो बारिश से पृथ्वी में आता है, और पृथ्वी के बाद वो अन्न में प्रवेश होता है। और अन्न के बाद वो पुरुष में प्रवेश होता है अन्न के द्वारा, और पुरुष के वीर्य में प्रवेश होकर बाद में स्त्री में प्रवेश होकर वही जीव संसार में आता। ये तो हमारे ऐसा आना जाना है, पांच अग्नि के द्वारा आते जाते। इसलिए वहां भी देखिए आपा शब्द प्रयोग किया है, केवल जल नहीं है, जल उनमें प्रदान है। वैसे ही यहां भी बता रहे हैं जल से अर्थात पंचभूतों से पुरुषम समुद्रित्य, अर्थात एक पुरुष को निकाल करके क्या किया उन्होंने, अमूर्चयत बोल तो अवयवों से बना दिया, एक ढांचा बना दिया बहुत बड़ा, अलग अलग अवयवों से जोड़ दिया, हाथ है पैर है, इस प्रकार उन्होंने एक विराट स्वरूप को बना दिया। उसके बाद अभी केवल ढांचा ही बना दिया, मान लीजिए हमारा जैसा शरीर ढांचा है, उसमें इंद्रिया नहीं है अथवा उसका अधिष्ठात्री देवता नहीं है, इसका क्या मतलब, जैसा मरा हुआ व्यक्ति में कोई प्रयोजन नहीं होता, वैसे ही उस परमात्मा ने दोबारा सोचा, मैंने ये पंचभूतों से एक विराट स्वरूप तो बना तो दिया, किंतु इसके अंदर कोई इंद्रिय का गोलक भी नहीं। जैसा मान लीजिए कोई कलाकार मूर्तिकार पहले सामान्य बनाता है एक ढांचा, उसके बाद विचार करता है उसका मुख कैसा बनाना है, आंख कैसा बनाना है, तो धीरे धीरे उसको आकार देता है, सीधा आंख से नहीं देता है, पहले ढांचा बना दिया, मूर्ति बनाने वाला भी व्यक्ति, और धीरे धीरे एक एक आकार देता है। वैसे ही परमात्मा ने पहले पंचभूतों से एक पिंड के समान आकार बना दिया, अभी उसमें इंद्रियों का गोलक बनाना है उनको, और उसके बाद इंद्रिया भी बनाना है, और उसके बाद इंद्रियों का अरिष्टात्री देवता भी, उनके बिना काम नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने पुनः विचार किया, ये जो मैंने ढांचा तो बना दिया, उसमें इंद्रिया भी अवश्य है, इंद्रिया रहेंगे तो देखेगा, और उन इंद्रियों के देखने से ही सबका रक्षा भी कर सकता है, और इंद्रिय के लिए गोलक भी चाहिए, और गोलक भी है, और उसका अधिष्ठात्री देवता यदि ना हो काम नहीं करेगा। जैसा हम रूप देख रहे हैं अथवा कोई आकार को हम देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो आंख से हम देख रहे उसका अधिष्ठात्री देवता है सूर्य है, प्रकाश के बिना आप नहीं देख सकते, तो इसलिए आंख से देखने के लिए उसका अधिष्ठात्री देवता प्रकाश चाहिए। चलो आंख भी है प्रकाश भी है, गोलक खराब हो गया आपका तभी भी नहीं देख सकते हैं, गोलक भी है प्रकाश भी है, इंद्रिय ही खराब हो गया तभी भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए गोलक भी चाहिए। एक गोलक जो हो गया ये अधिभौतिक, और उसके अंदर जो इंद्रिया है ये आध्यात्मिक हो जाएंगे, और जो प्रकाश है सूर्य का ये अधिदैविक होगा। तीनों के द्वारा ही हम व्यवहार करते हैं, गोलक भी चाहिए, गोलक के अंदर इंद्रिया भी चाहिए, और उनका अधिष्ठात्री देवता चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। इसलिए उस परमात्मा ने पुनः विचार किया, ये जो पंचभूतों से मैंने एक आकार विशिष्ट पुरुष तो बना दिया, ना इसमें इंद्रिया है, ना इंद्रिया गोलक है, ना इसका अधिष्ठात्री देवता है। वो विचार करने के बाद उन्होंने पुनः संकल्प किया, यही बता रहे आगे के मंत्र में। तम अव्यतपत, तम बोल तो बनाया हुआ जो विराट पुरुष, उस विराट पुरुष को उद्देश्य करके, जैसा कोई मूर्तिकार है, पहले ढांचा बना दिया था, उसको उद्देश्य करके वो विचार करता है कैसा आंक बनाना चाहिए, कि ऊपर बनाना है अथवा नीचे, पीछे बनाना है अथवा सामने, कान कहां बनावे। यदि वो मूर्तिकार ने विचार नहीं किया, जहां आंख होना था वहां कान बना दिया, जहां कान होना था वहां आंख बना दिया, कान भी क्या एक बनावे अथवा दो बनावे, दो कान का कोई जरूरत नहीं, एक से काम चलेगा, और कान भी बना दिया उसका गोला काय के लिए, एक ही बना सकते हैं। तो किसी ने कहा जो कलयुग में ही चश्मा लगना पड़ेगा, इसलिए दो कान चाहिए, एक में चश्मा रहेगा नहीं। तो भगवान ने आगे का सोच करके दो कान बनाया बोलते हैं। तो ये सब विचार करना पड़ेगा, तभी जाके वो मूर्ति का आकार ठीक हो। वैसे ही पहले जो ढांचा जैसा बनाया था उसको लेकर परमात्मा ने विचार किया, वही बता रहे तम बोल तो उस विराट पुरुष, उस विराट पुरुष को उद्देश्य करके अव्यतपत, अव्यतपत का मतलब उन्होंने संकल्प किया, या और कोई तप नहीं, चिंतन किया, ये बनाया हुआ ढांचा को मैं साकार कैसा दे, किस प्रकार से इसको एक अच्छे रूप से सजावे, ये उस ईश्वर ने संकल्प किया, वही बता रहे अव्यतपत। इस प्रकार विचार करते करते उसकी सबसे पहले दृष्टि जो ढांचे के ऊपर की ओर गई, मुखम निरभिद्यता, तभी उस संकल्प से उसमें सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ। जैसा मान लीजिए जो अंडा होता है पक्षियों का, तो अंडा को क्या करते हैं, वो जो पक्षी है उष्ण देते, तो सबसे पहले उस अंडे से मुख आता है। वैसे ही उस परमात्मा ने पहले पंचभूतों से एक अंडा का समान एक बनाया था, और उसके बाद उन्होंने विचार किया, चिंतन किया, वो अंडा फट करके सबसे पहले मुंह आ गया। ये ब्रह्मांड की सृष्टि बता रहे हैं, कैसा ब्रह्मांड बना, तो मुंह निकल गए, वही बता रहे मुखम निरभिद्यतः, सबसे पहले वह मुख प्रकट हो गया। कैसा दृष्टांत दे रहे, यतः अंडम, जैसा पक्षी के अंडे में सबसे पहले मुंह आता है करेंगे। आगे का विचार हम लोग इस मंत्र के ऊपर कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।